tambula मधुर वचन बोल करके भगवान ने उसको विदा किए। सूर्य का छोड़ उसे छोड़े वह दुपट्टा पकड़ ली थी भगवान का। भगवान अपना पितांबर दुपट्टा खिलवाए उड़ाए और अपने समाज के साथ चलेंगे पियाने के लिए उन्होंने मधुर वचन का प्रयोग किया। माधुरी वाणी जिसमें मधु हो मधु से ही मधुर बनता बहुत मधुर वचन दे रहे। मधुर वचन क्या बोले मैं तुम्हारे शुद्ध भाव से उत्निष्ठ भाव से तुम्हारे वश में हूं और सच पूछो तो मैं गर्भ से यहां आया मथुरा आया केवल तुम्हारे लिए। भगवान इस प्रकार की मधुर वाणी बोल रहे थे। भगवान ने अभी तेरे पाप की कसम मैं तुम्हारे लिए आया मेरे आने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। इस प्रकार मधुर वचन बोले उसका स्वागत दिया पूरा करके विश्रू दिया पूरा करके 3000 दिनार ऊपर चलने लगे। तो मथुरा का बाजार आप लोगों ने देखा होगा जमुना के किनारे जो गई है मेन सड़क द्वारका भीष मार्ग उस तरफ भगवान जा रहे थे तो मार्ग गुजर रहा था, मार्ग राजमार्ग के नजदीक में बाजार है, वो बंद पथ है, बनियों का पथ। तो अब वैसे लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं भगवान का, इसका वर्णन करते हैं। नाना उपायन भेंट की सामग्री के लिए, नाना उपायन समझा है बहुत सुंदर सुंदर वास्त्र विपुल आदि भेंट कर रहे थे और रत्नों की माला, सोने की मालाएं, हीरा की माला, डायमंड की माला अर्पित कर रहे थे और बहुत स्वादिष्ट फल दैवी अर्पित कर रहे थे, भगवान को ला करके दे रहे थे श्री कृष्ण भगवान को। कुछ उपायन का नाम यहाँ दस रहे सूर्य गोस्वामी, तांबूल भगवान के लिए और श्री बलराम जी के लिए तांबूल अर्पित कर रहे, तांबूल और श्रत का सुरत की माला, सोने की मालाएं, हीरे की मालाएं अर्पित कर रहे थे दोनों भाई और गोपो के लिए। श्री बलराम जी के साथ श्याम सुंदर का बहुत आदर हुआ, सत्कार हुआ, वैश समाज के द्वारा। हम जितने भी गर्ग गर्ग या मित्र नाव तक थे, गोर वंशल सबसे ज्यादा भगवान का बहुत बड़ा सम्मान है। इस पर व्यापारिक है इन वस्तुओं को विक्रेता, ये ला ला करके भगवान को और श्री बलराम जी को देने लगे। नागरजह आरती का भगवान श्री कृष्ण नए भाई के साथ बहुत अर्पित हुए, सम्मानित। अब वैश्य परिवार की स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं। वैसे तो मथुरा के सभी लोग भगवान कृष्ण पर आसक्त थे और सब प्रेम कर रहे थे, परंतु स्त्रियों का हृदय कोमा होता है, उनका अधिक भाव था भगवान के प्रति, तो उनका वर्णन सिद्ध जी कर रहे हैं। तत्पर थना स्मरत शोभा आत्मान नागजन स्थिर विश्वास वास वगैरह बलया लेख लिए थे। सदौसना का अर्थ है तस्य दर्शन, श्री कृष्ण दर्शन देना, इसलिए आत्मान न अभिजन। श्री श्याम सुंदर को देखकर स्त्रियां अपने रात को भूल जाती थी, प्रश्न नहीं आते, स्मर शब्द ध्यान देने जब है। स्मर शब्द का अर्थ होता है काम, और यह काम प्रेम विलास रूप है, प्राकृत जगत का काम नहीं है। सांसारिक तो कामदेव का या दृश्य नहीं है, प्रेम विलास रूप काम भगवान कृष्ण के प्रति काम उत्पन्न हो यह बहुत दिव्य है। श्री कृष्ण को देखकर तब दर्शना स्मरत हो प्रेम विलास करना प्रेम और प्रेम विलास से जो हो जो का धैर्य था धैर्य नहीं रहा अर्थात मोह उत्पन्न हो गया। और जहां थी वहीं खड़ी आ गई बैठी आ गई आत्मानंद न हुई अभिगम ये अपने आप को नहीं जान पाए सुधी नहीं रह गई श्री कृष्ण को देखते हैं तो अर्थ है कि आत्मानंद देह देही की सुधी नहीं रही अपनी सुधी नहीं रहे उनको हम कहाँ हैं हम कौन हैं हम क्या कर रहे हैं इस समय इसकी सुधी नहीं रही देह की सुधी नहीं रही और आत्मा की सुधी भी नहीं रही भूल गए अपने आप को भगवान इतने सुंदर हैं उनको देखते ही सुंदर दशाएं होते हैं प्रेम विलास रूप काम की दस दशा का वर्णन श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने किया है सुंदर की दस दशा होती है प्रथम है चक्षु राग चक्षु राग प्रथम जब देखते हैं कृष्ण को तो आंखें बिल्कुल असक्त हो जाती देखती देखने लगती है एक चक्ष देखती तो इसको चक्षु राग कहते हैं यदि श्री कृष्ण ही देख लें तो उनकी आंख और मतलंगना की आंख गोपी की आंख या मथुरा की नागरी की आंख ले जाती है इसको चक्षु राग कहा गया और पुनः आंख उनके मुख कमल से हट नहीं सकते देखते ही बनता देखते रहते इसके बाद पिता संग पिता असंग की आसक्ति उत्पन्न हो जाती और संकल्प उत्पन्न संकल्प कि मैं कैसे इसमें से मिलूंगी इसका आलिंगन करूंगी इससे बातें करूंगी इसको कहते हैं संकल्प प्रेम विलास की पिछली अवस्था चौथी अवस्था है निद्रा छेद नींद नहीं आती है कृष्ण से मिलने को लालसा इतनी बढ़ोतरी होती है कि नींद हराम हो जाती है नींद नहीं आती स्वामिता शास्त्रीय करता है, स्वामिता शरीर दुबला हो जाता है, हो जाता। इसके बाद विषय निवृत्ति शक्ति करता है, किसी विषय काम मन नहीं लगता है, आंख से न कुछ देखना अच्छा लगता है, खाना पीना या काम करना कुछ भी अच्छा नहीं होता, इसको विषय निवृत्ति कहा गया। और छात्री दशा है कृपा हानि, लज्जा नष्ट हो जाती है। आखिरी दशा है मूर्छ, आखिरी दशा है उन्माद, नौवीं दशा है मूर्छा, और दसवीं दशा है मृत्यु मरण, उनको निश्चेष्ट हो गया। प्रेम विलास में स्त्रियों का वर्णन, प्रेम दशा का वर्णन नौमा दशमा का नहीं किया जाता, क्योंकि हम मंगल स्वरूप मूर्खा और मृत्यु भुला इसका वर्णन नहीं किया जाता। यहाँ पर सातवीं स्थिति का वर्णन सिद्ध कर रहे हैं, शरीर की स्थिति नहीं रहेगी, देह की और देही की स्थिति नहीं रहेगी, देहन देहिया आगे कुछ भी ध्यान नहीं है, हम कौन हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, इसका ध्यान देते हैं। इस नीतिश को ऐसे देख रहे थे कि कुछ सभी रहे थे, और इस समय जो विश्वस्त तो राष्ट्र खबर वस्त्र तो शिथिल हो रहे हैं, आभूषण जी रहे हैं और केस का शिखर गया है, ये नहीं जानता। समाज भरा है, परिवार है, लेकिन दिन की शुद्धि भूल गए, इस कारण से शरीर का श्रृंगार बिगड़ रहा है, लिंगत हट गया है, बाल बिखर गया है, कंटकी भूजी पड़ गई है, और बवर चूड़िया हाथ से फिसल गई है, तो ध्यान नहीं है। चूर क्यों हाथ से निकल गई, सोनित चूड़िया हाथ से निकल गई, स्वस्थ हो गई, इसका अर्थ है तत्काल कृष्ण को देखते हुए प्रेम आकांक्षा से इतनी दुर्बल हो गई, इतनी स्थिर हो गई कि हाथ पतला हो गया, अच्छी भी गिर गई, बड़ा गिर गया। और केस पास बिखर गए, सभी नहीं रहे, शरीर में अंगड़ाई हो रही थी और लोट रहे थे जमीन पर, इसीलिए सुबह वो संत कहते हैं स्त्रियों की दशा ऐसी है, उनको देखने पर ऐसा लगता है कि चित्र बनाई हुई स्त्री है, जैसे दीवार पर चित्र बनाते हैं उसमें कोई हलचल नहीं, कोई हाथ का संचालन नहीं, पैर का नहीं, पलक नहीं गिरता है। चित्र में बनी हुई स्त्री जैसे होती है, वैसे निष्पन्द बन गई स्त्री। बहुत काल से सुनी थी कि श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, लेकिन देखने में और सुनने में बहुत अंतर होता है। जन ही देश में तेही प्रेम की दशाएं उत्पन्न हो रही, इसमें कुछ चालक क्रम लगता है, कुछ समय लगता है, एक के बाद दूसरी किसी तत्व अच्छा होती जाती है। लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा प्रभाव है कि उनके दर्शन होते ही एकाएक सभी दशा उत्पन्न हो गई। चक्षु याव होते ही चित्त का असंग और संकल्प कविता ही हो रहा है, तथा विषय के लिए लज्जा करना तब एक समय ही होगा। इस संसार में इस काम की दशाएं शास्त्र नहीं होते, एक दशा होते कुछ काल क्रम लगता है, कुछ समय लगता है, उसके बाद धीरे धीरे दस दशाएं उत्पन्न होते हैं। लेकिन स्मृति से इतने मधुर हूं, इतने सुंदर हूं, इधर उनका दृष्टि पड़ना, उनको देखना और प्रेम की राष्ट्रक्षण उत्पन्न हो जाती है। अतः इन स्त्रियों भगवान से आ रहा है कि इस काल भूल गए कि हम कौन हैं। अब घर जाने की सीधी नहीं रहेगी, जैसे खड़ी थी ऐसे खड़ी रह गई, बैठी थी बैठी रह गई, देह की सीधि नहीं रहे, इसलिए देह के श्रृंगार का ध्यान नहीं रहे। लज्जा नहीं रहे, आत्मानु न अभिधन थे, उसने अपने आप को नहीं जानते, लिख मुख्य जैसे इस समय दीवार कथित जन्म में मूर्ति बनती है, तो चित्र में बोलती नहीं, बोलती नहीं है और सुनती नहीं, आंख का संचालन बंद रहता है, आंखें खुली हैं तो खुली ही रहेंगे, खुश रहने आंखें बंद तो नहीं होंगे, यदि आंखें बंद बना दिया गया है तो बंद ही रहेंगे, खुली नहीं होंगे। इस तरह कृष्ण का एक प्रभाव जहां जा रहे थे वहां के स्त्रियों की ये दशा हो रही है। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि ब्रज में श्री गोपी जन की क्या दशा होती है। गाय चराने जाते थे वृंदावन और उत्तरा के लौटते थे, कुछ दिनों देखने के दर्शन होता था, उनके क्या दशा होते दर्शन होने पर नहीं दर्शन हुए कृष्ण इतने सुंदर हैं इतने मधुर हैं इसकी कल्पना इस प्राकृतिक जगत में नहीं की जा सकती जिनको देखने पर वस्त्र शिथिल हो जाता है श्रृंगार शिथिल हो जाता है और नाच के बड़ा नाच की चूड़ियां दूर पड़ती हैं कृष्ण समस्त जीवों के परम परमास्तर है और उनके इस सौंदर्य के साथ सबका संबंध है तभी इसका आस्वादन कर सकते हैं परंतु इस संसार में ये जल्दी आते नहीं आंखों के सामने प्रकट नहीं होते अतः सबसे बड़ा साधन है इनके बारे में सुनना ये कितने सुंदर हैं क्या क्या लीला करते हैं इसको सुनना चाहिए और सुनते सुनते मन आसक्त हो जाता है मच्छर की स्त्रियां धन्य है बहुत दिनों से बहुत वर्षों से श्रीकृष्ण के विषय में सुनती आ रही थी लेकिन आज देखने को मिला और देखने पर प्रेम की दशाएं उत्पन्न हो गई तो सुनना ही मुख्य है श्रीकृष्ण के विषय में सुनना एक सामान्य श्रवण नहीं है जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है सब दर्शना स्मरक क्षोभ स्मरक क्षोभ स्मरक अक्षोभ प्रेम उत्पन्न हुआ स्त्रियों में और प्रेम से क्षोभ होगा क्षोभ का से भेद नाश घर चला गया और इस कारण से स्वास्थ्य मास खबर है उनके वास है उनके दास को शिथिल हो रहा है और खबर इस कार बल है ऐसा लगता था जैसे चित्र बनाया गया इसके बाद श्री भगवान उन वासियों से मथुरा नगर में रहने वाले लोगों से पूछने लगे तो कहते थे आप सुने इधर आए वन मिनट लवन से कहे जो सुनिए वो जग शाला कहाँ है धनुष का स्थान कहाँ कंस के पास एक धनुष था शिव जी का दिया हुआ भूतेश्वर का दिया हुआ मथुरा में भगवान शिव रहते हैं यहाँ के द्वारपाल के रूप में उनका नाम भूतेश्वर है भूत माने जीव जीवों के ईश्वर या भूत नामी घोष्ट घोष्ट कोई किया तो भगवान भूतेश्वर नाथ ने हंस को धनुष दिया था और कहा था कि इस धनुष की रक्षा करना, जब तक इस धनुष की रक्षा होगी और इसकी जब तक पूजा करते रहेंगे तब तक तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता। एक प्रकार से भगवान शिव ने संकेत कर दिया था इस धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति तुम्हारी जान मारेगा, तुम्हारा दर्द करेगा, इसकी रक्षा करना। उस समय से वह धनुष बहुत सुरक्षित था, स्पेशल फौज सेना लगाई गई थी इसकी रक्षा करने के लिए। रक्षा कर रहे थे, उसकी पूजा हो रही थी। पूजा करने के लिए उसके लिए मंदिर बनाया गया था, धनुष की पूजा करने के लिए वही उसके देव था। और कंस को जब श्री नारद जी ने बताया कि तुमको मारने वाले कृष्ण और बलराम हैं, यहां से जन्म लिए और वसुदेव नदी से भेज दिया उनको नंद दादा के यहां, जो तुम्हारे आदमियों को मारे हैं, तुम जिनको भेजे सबको मारे हैं और उन्हीं के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है। तो यह सुनते ही कौन से वसुदेव जी को मारना चाहा, लेकिन नारद जी ने कहा कि वसुदेव को मारने से तुमको क्या फायदा है, वसुदेव के हाथ से मृत्यु है कि वसुदेव के बेटा के हाथ से मृत्यु है। इसने कहा नहीं, बेटा के हाथ से तो अच्छा है कि इन दोनों वसुदेव के